नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8:30 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संसद में 131वें संविधान संशोधन विधेयक के पारित न होने को महिलाओं के अधिकारों के साथ अन्याय बताया। मुख्यमंत्री ने मेट्रो के चौथे चरण के अंतर्गत आरके आश्रम मेट्रो स्टेशन पर जारी निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने सड़क सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान देने वाले यातायात प्रहरियों को सम्मानित किया और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह के 4 आरोपियों और अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्कर गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8:30 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ये संबोधन महिला आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा में 2/3 बहुमत हासिल करने में विफल रहने के बाद हो रहा है। परिसीमन के माध्यम से महिला आरक्षण के कार्यान्वयन से संबंधित प्रस्तावित विधेयक लंबी बहस के बाद कल पारित नहीं हो सका। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इसके साथ ही 28 जनवरी से शुरू हुए बजट सत्र का समापन हो गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि सत्र के दौरान 93% कामकाज हुआ। सदन की कुल 31 बैठक हुई और 12 सरकारी विधेयक पेश किए गए और 9 विधेयक पारित किए गए। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि कुल मिलाकर सदन 157 घंटे से अधिक समय तक चला और लगभग 110% कामकाज हुआ। इस सत्र में मनोनीत सदस्य हरिवंश तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति चुने गए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संसद में 131वें संविधान संशोधन विधेयक के पारित न होने को महिलाओं के अधिकारों के साथ अन्याय बताया है। मुख्यमंत्री ने आज काली पट्टी बांधकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आवाज तक मार्च निकाला और विपक्ष की कथित महिला विरोधी राजनीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि संसद की घटना महिलाओं के लिए पीड़ादायक है। उन्होंने कहा कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के कारण ये विषय उनके लिए केवल राजनीति नहीं बल्कि संवेदना और सम्मान का विषय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन विपक्ष ने इसका समर्थन नहीं किया।
पिछले 2 दिन लोकसभा के सदन में घंटों तक ये चर्चा हुई कि देश की आधी आबादी को आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। ये जो विपक्षी दल है कहते हैं महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी सांसद बांसुरी स्वराज ने भी इस मुद्दे पर विपक्ष की आलोचना की।
कल विपक्ष ने ये तय कर दिया, उनकी नीयत ये है कि महिलाओं की भूमिका वो चाहते हैं कि केवल और केवल मतदान केंद्र तक रहे, और जब सत्ता में भागीदारी की बात आई तो उन्होंने अपने हाथ खींच लिए। वो चाहते ही नहीं है कि महिलाओं को उनका हक दिया जाए।
भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने महिलाओं के साथ कभी न्याय नहीं किया।
कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के दलों ने कभी बहनों के साथ न्याय नहीं किया। आरक्षण की बात की, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में दोनों सदनों में इस बिल को पास करने की कोशिश नहीं। अब 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 33% आरक्षण लोकसभा विधानसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया। कोशिश थी कि इसको 2029 तक लागू कर दिया जाए, लेकिन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोगों ने कल फिर इस बिल के खिलाफ वोटिंग करी है और इस खिलाफ वोटिंग होने से बिल गिर गया है।
भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने आज महिला आरक्षण विधेयक पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की टिप्पणियों की निंदा की। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रसाद ने कहा कि परिसीमन के बिना लोकसभा या विधानसभा में सीटों से संबंधित कोई संशोधन संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि जनगणना में काफी समय लगता है, इसलिए परिसीमन पिछली जनगणना के आधार पर किया जा सकता है। भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने भी कांग्रेस पर देश की महिलाओं की उम्मीदों को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया।
इस बात का उन्होंने राजनीतिक जश्न मनाया कि उन्होंने देश की साधारण महिला के राजनीतिक आकांक्षाओं को कुचला। महिलाएं याद रखेंगी कि जब 6 दशक तक कांग्रेस के पास सत्ता थी तो 11 करोड़ महिलाएं इस देश में एक शौचालय से वंचित थीं। महिलाएं याद रखेंगी कि 25 करोड़ महिलाओं को बैंक का खाता खोलने में कांग्रेस की सरकार ने कभी समर्थन नहीं दिया।
इससे पहले नई दिल्ली में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि कल महिला आरक्षण विधेयक पारित न होना बहुत बड़ी जीत है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज मेट्रो के चौथे चरण के अंतर्गत आर के आश्रम मेट्रो स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिए। एक रिपोर्ट।
निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली मेट्रो राष्ट्रीय राजधानी की जीवन रेखा है, जहां रोज लाखों यात्री सफर करते हैं, इसलिए निर्माण में गुणवत्ता, सुरक्षा और समय सीमा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि आर के आश्रम मार्ग मेट्रो स्टेशन भविष्य में एक महत्वपूर्ण इंटरचेंज हब के रूप में विकसित होगा, जहां वर्तमान में संचालित ब्लू लाइन और मेजेंटा लाइन के बीच कनेक्टिविटी स्थापित होगी। मुख्यमंत्री ने फेज 4 कॉरिडोर की घनी आबादी को रेखांकित करते हुए कहा कि ये कॉरिडोर पश्चिम, उत्तर और मध्य दिल्ली के आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों से होकर गुजरेगा, जिससे कनेक्टिविटी मजबूत होगी, ट्रैफिक दबाव कम होगा और प्रदूषण में कमी आएगी। इसके अलावा श्रीमती गुप्ता ने अधिकारियों को कार्य में तेजी और पारदर्शिता बनाए रखने तथा यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न होने देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली की बढ़ती जरूरतों के अनुरूप आधुनिक और मजबूत कनेक्टिविटी तैयार करना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए अमन यादव।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ के राष्ट्रीय महिला उद्यमी सम्मेलन में शामिल हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में महिला उद्यमिता तेजी से बढ़ रही है और महिलाएं अब केवल भागीदार नहीं बल्कि नेतृत्व कर रही हैं। उन्होंने वर्तमान में स्टार्टअप इकोसिस्टम में महिलाओं की बढ़ती भूमिका को भी रेखांकित किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। टोडापुर स्थित दिल्ली यातायात पुलिस मुख्यालय में उपराज्यपाल तरनजीत संधु ने सड़क सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान देने वाले यातायात प्रहरियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर श्री संधु ने महिला यातायात पुलिस कर्मियों को सशक्त बनाने के लिए 38 नई स्कूटियों और 2 आपदा राहत वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया कि रोहिणी स्थित स्वर्ण जयंती पार्क के पास शिव महापुराण कथा आयोजन के कारण इस क्षेत्र में विशेष यातायात व्यवस्था लागू की गई है। ये यातायात व्यवस्था इस महीने की 24 तारीख तक लागू रहेगी। इस दौरान सवेरे 11 बजे से शाम 6 बजे तक यातायात नियमन और डायवर्जन लागू रहेगा। इस व्यवस्था के कारण राम मूर्ति पासी मार्ग, KN काटजू मार्ग और HL परवाना मार्ग पर यातायात प्रभावित रहने की संभावना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत समुद्री बीमा पूल के गठन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसके लिए 12,980 करोड़ रुपए का सॉवरीन गारंटी फंड बनाने का निर्णय लिया गया है।
इंश्योरर्स और री इंश्योरर्स वेस्ट एशिया में जाने वाले शिप्स को इंश्योर करने के लिए तैयार नहीं है, तो इसमें शिप है, शिप ओनर है, उसके पीछे इंश्योरर और उसके पीछे री इंश्योरर और उसके पीछे सॉवरेन बैकस्टॉप। अगर इस तरीके से देखें तो ये व्यवस्था की गई है इस प्रोग्राम के तहत। करीब 12,980 करोड़ रुपए की सॉवरेन गारंटी का एक फंड क्रिएट किया जाएगा जो कि मैरिटाइम इंश्योरेंस के लिए रहेगा। जितनी भी तरह की मैरिटाइम रिस्क्स है, हल, मशीनरी, कार्गो, PNI, वॉर, सबको इससे कवर करेंगे।
श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशन भोगियों को महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करने को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे संस्करण को मार्च 2025 के बाद मार्च 2028 तक जारी रखने की स्वीकृति दी। उन्होंने कहा कि इसमें बस्तियों को ग्रामीण कृषि बाजारों, उच्च माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों से जोड़ने वाले मुख्य मार्गों और प्रमुख ग्रामीण संपर्क शामिल है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने 24,815 करोड़ रुपए की लागत वाली 2 रेलवे परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कक्षा 10वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों से फोन पर संवाद कर उन्हें बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने विद्यार्थियों की मेहनत, अनुशासन और समर्पण की सराहना करते हुए उनके अभिभावकों और शिक्षकों को भी शुभकामनाएं दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बधाई संदेश पर दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें अमेरिका में भारत का राजदूत के रूप में नियुक्त किया था और वो केवल अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। ये खुशी की बात है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने ट्वीट में उनके कार्य की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत साझेदारी में बदला गया है, जो दोनों देशों के लिए लाभकारी है। उपराज्यपाल ने आज नई दिल्ली स्थित यकृत और पित्त विज्ञान संस्थान में विश्व यकृत दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। इस वर्ष का विषय सॉलिड हैबिट्स स्ट्रॉन्ग लिवर को रेखांकित करते हुए श्री संधु ने कहा कि लिवर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित और पौष्टिक आहार अपनाना और साथ ही नियमित शारीरिक गतिविधि बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ऑनलाइन निवेश के नाम पर लोगों को झांसा देकर ठगी करते थे। आरोपियों ने पीड़ित को अधिक लाभ का लालच देकर कई किस्तों में लगभग 33 लाख रुपए से अधिक की रकम ट्रांसफर करने के लिए उकसाया। आरोपियों को दिल्ली, पंजाब और राजस्थान से गिरफ्तार कर उनके पास से 3 मोबाइल फोन और 3 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। मामले की जाँच जारी है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्कर गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 25 लाख रुपए का 1 किलो से अधिक मादक पदार्थ बरामद किया गया। इसके अलावा 4 लाख रुपए की नकदी भी जब्त की गई। आरोपी मादक पदार्थ थाईलैंड से लाकर दिल्ली सहित कई स्थानों में सप्लाई करते थे। मामले की जाँच जारी है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने LPG सिलेंडर के कालाबाजारी मामले में शाहीन बाग क्षेत्र के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के पास 108 LPG सिलेंडर और परिवहन में इस्तेमाल किए जा रहे 2 वाहन बरामद किए गए। मामले की जांच जारी है। विश्व विरासत दिवस के अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश राज सिंह वर्मा और मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली वासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की समृद्ध और जीवंत विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रही है। श्रीमती गुप्ता ने आश्वासन दिया कि उनकी सरकार ऐतिहासिक स्मारकों और सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। श्री सिंह ने कहा कि देश की धरोहरों की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है, क्योंकि देश की पहचान और गर्व का आधार है। श्री सिरसा ने कहा कि विरासत स्थल केवल स्मारक नहीं बल्कि भारत की सभ्यता और संस्कृति की जीवंत कहानियां हैं, जिन्हें सुरक्षित रखना और सम्मान देना बहुत जरूरी है। इस वर्ष हज के लिए 371 हज यात्रियों का पहला जत्था आज नई दिल्ली से सऊदी अरब के मक्का के लिए रवाना हुआ। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सुगम, सुरक्षित और आरामदायक हज यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। दिल्ली हज कमेटी के अध्यक्ष कौसर जहां ने कहा कि सरकार हज यात्रा को आसान बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हज सुविधाओं का विस्तार हो रहा है और सरकार का पूरा प्रयास है कि इंशाल्लाह उनकी यात्रा जितनी हो सके सुगम हो, अच्छी हो और आसान हो। हमने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया है कि जो हमारे आजमीन हज है उनका सफर जितना हो सके आसान हो।
उत्तराखंड में अक्षय तृतीया के अवसर पर 4 धाम यात्रा कल से शुरू होगी। इसके लिए ऑफलाइन पंजीकरण भी जारी है। कल पहले दिन 2713 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया। श्रद्धालुओं के लिए मौके पर पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न ट्रांजिट पॉइंट्स पर टीम भेजी जा रही है। राजधानी में आज दिनभर धूप खिली रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8:30 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संसद में 131वें संविधान संशोधन विधेयक के पारित न होने को महिलाओं के अधिकारों के साथ अन्याय बताया। मुख्यमंत्री ने मेट्रो के 4th चरण के अंतर्गत RK आश्रम मेट्रो स्टेशन पर जारी निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उपराज्यपाल तरनजीत संधु ने सड़क सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान देने वाले यातायात प्रहरियों को सम्मानित किया। और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह के 4 आरोपियों और अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्कर गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।